आज हम एक ऐसे विचारक के संसार में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही रणनीति, युद्ध और शायद थोड़ी रहस्यमयता का भी ख्याल आता है। 2500 साल पहले के चीन में हुए, लेकिन आज भी, मतलब सिलिकॉन वैली से लेकर मिलिट्री अकेडमियों तक, जिनके विचारों का डंका बजता है। सुन त्सू।
बिल्कुल, गुरु सुन जैसा कि उनके नाम का मतलब है, और उनकी वो अकेली किताब बिंगफा यानी कला युद्ध की, वो वाकई कमाल की है।
हाँ,
ये सिर्फ आप देखिए तलवार और ढाल के बाद नहीं है, ये तो दिमाग के पैतरों की, मनोविज्ञान की और कह सकते हैं कंपटीशन की नब्ज पकड़ने का एक तरह से ग्रंथ बन गई है।
और ये रहस्य वाली बात भी तो है, क्या सुन त्सू वाकई में कोई एक इंसान थे?
हाँ, ये सवाल तो है।
या फिर ये कई लोगों की मिलीजुली समझ है जो बस इस नाम के पीछे छुपी है? ये चीज उनके विचारों को और पेचीदा बना देती है, नहीं?
सच में, लेकिन शायद ये रहस्य उनके विचारों की ताकत को कम नहीं करता, हो सकता है बढ़ाता ही हो। चलिए जरा उस जमाने की धूल हटाते हैं
हाँ।
और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या माहौल था जिसने सुन त्सू जैसे दिमाग को, या कहें इस विचारधारा को जन्म दिया।
तो हम बात कर रहे हैं करीब 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, चीन के इतिहास का वो दौर जिसे वसंत और पतझड़ काल कहते हैं।
हाँ, स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड।
नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर शायद हालात उतने अच्छे नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, नाम पे मत जाइए, वो तो बस एक हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है। असल में वो भारी उथल पुथल का दौर था।
अच्छा।
हाँ, जो शक्तिशाली झो राजवंश था वो कमजोर पड़ रहा था और पूरा चीन छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, और ये राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे।
ओहो।
मतलब अपनी जमीन, अपना वजूद बचाने के लिए वो रोज की जीने मरने की लड़ाई थी एक तरह से।
वाह, यानी लगातार युद्ध और अस्थिरता।
और क्या क्या लड़ाई का तरीका भी बदल रहा था उस वक्त।
हाँ, यही तो खास बात है। पहले की लड़ाइयाँ थोड़ी रस्मी होती थीं, मतलब कुलीन योद्धा होते थे, रथों पर सवारों के लड़ते थे।
लेकिन इस दौर में सब बदल गया। अब थी बड़ी बड़ी पैदल सेनाएं, शहरों को घेरने की नई तकनीकें आ रही थीं,
घेराबंदी वगैरह।
हाँ बिल्कुल, तो युद्ध ज्यादा क्रूर हो गए थे, लंबे चलते थे और बहुत खर्चीले भी। तो ऐसे में पुरानी रणनीतियां काम नहीं आ रही थी, नई सोच की सख्त जरूरत थी।
और विचारों के लेवल पे भी तो बहुत कुछ चल रहा था, जिसे 100 विचारधाराओं का काल कहते हैं।
बिल्कुल सही, वो सिर्फ सियासी या फौजी उथल पुथल का ही दौर नहीं था, वो विचारों का एक महामंथन चल रहा था।
अच्छा।
एक तरफ तो कन्फ्यूशियस थे, जो नैतिकता, समाज में व्यवस्था, सही बर्ताव, इन सब पर जोर दे रहे थे।
ठीक है।
दूसरी तरफ ताओवादी थे, जो कहते थे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ, सहज रहो, ज्यादा दखल मत दो। और फिर वो विधिवादी लीगलिस्ट्स भी थे।
हाँ, उनका क्या मानना था?
उनका मानना था कि भाई देखो, कठोर कानून और राज्य की पूरी ताकत ही समाज को कंट्रोल में रख सकती है।
तो इतने सारे अलग अलग दर्शन, इनके बीच में सुन त्सू कहाँ फिट होते हैं? उनका नजरिया क्या था?
यही बात सुन त्सू को खास बनाती है, वो इनमें से किसी एक खांचे में, मतलब पूरी तरह से फिट नहीं होते।
अच्छा।
उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल था, जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ। न वो कोई नैतिकता के उपदेशक थे, ना ही सिर्फ कानून के हिमायती। उनका एक ही लक्ष्य था, जीतना।
सिर्फ जीत।
हाँ, और इसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान, धोखा, सही वक्त पर सही चाल चलना और दुश्मन की कमजोरियों को समझना, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो कह सकते हैं कि उन्होंने रणनीति और समझदारी का एक तीसरा रास्ता दिखाया, जो बहुत प्रभावशाली था और सीधे उस युग की चुनौतियों का जवाब था।
चलिए अब जरा उस व्यक्ति पर आते हैं जिनके नाम से ये सारे विचार जुड़े हैं, सुन त्सू, जिन्हें हम सुन त्सू कहते हैं। हालांकि जैसा हमने शुरू में ही कहा, उनके होने पर ये एक सवालिया निशान है।
हाँ, और ये जानना जरूरी है कि हमें जो भी जानकारी मिलती है ना, वो ज्यादातर सीमा क्यान के ग्रैंड हिस्टोरियन रिकॉर्ड से है। और ये किताब सुन त्सू के माने जाने वाले समय के लगभग 400 साल बाद लिखी गई।
ओ, 400 साल बाद।
हाँ, तो इसमें इतिहास और किंवदंतियां, मतलब कहानियां, वो घुल मिल गई हैं। ये स्वाभाविक है, और ये चीज उनकी शख्सियत को और रहस्यमयी बना देती है।
माना जाता है कि वो ची राज्य के थे, एक छोटे सामंती परिवार से, और उन्हें परंपरागत 6 कलाओं की शिक्षा मिली थी।
हाँ, 6 आर्ट्स।
रस्म, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, लिखना, गणित।
क्या इस शिक्षा का उनकी सोच पर कोई असर दिखता है?
जरूर दिखता होगा। देखिए, ये कलाएं सिर्फ स्किल नहीं थीं, ये अनुशासन सिखाती थी, सटीकता, रणनीति की समझ भी बढ़ाती थी।
अच्छा, कैसे?
जैसे तीरंदाजी में लक्ष्य साधना हो या रथ चलाने में कंट्रोल रखना, ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक सोच से जुड़ता है। तो वो किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत दोनों का असर उनकी सोच में दिखता है।
और फिर उनका 6 राज्य छोड़कर वो राज्य जाना, इसका क्या कारण था?
कहा जाता है कि 6 राज्य में कुछ सियासी उथल पुथल हुई, अस्थिरता थी, तो उन्हें दक्षिण के वो राज्य जाना पड़ा।
उस समय एक उभरती हुई ताकत था और वहां के राजा थे हेलू, जो बड़े महत्वाकांक्षी थे। उन्हें काबिल सलाहकारों की तलाश थी और सुनतुजू की शोहरत शायद पहले ही वहां पहुंच चुकी थी।
और यहीं पर वो मशहूर किस्सा आता है, राजा की दासियों को सैनिक बनाने वाला। जरा बताइए वो कहानी।
हाँ, सीमा ख्यान इसका जिक्र करते हैं। कहानी ये है कि राजा हेलू ने सुनतुजू की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए उन्हें अपनी 180 दासियों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने को कहा।
दासियों को मिलिट्री ट्रेनिंग?
हाँ। अब जाहिर है दासियों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, वो हंसी मजाक करती रहीं। बार बार समझाने पर भी जब बात नहीं बनी,
तब सुनतुजू ने वो कड़ा कदम उठाया।
बिल्कुल, उन्होंने टुकड़ी की नेता बनाए गए राजा की 2 सबसे फेवरेट दासियों का सिर कलम करवा दिया।
क्या बात कर रही हैं?
हाँ, ये देखकर बाकी दासियों में खौफ बैठ गया और वो फौरन डिसिप्लिन में आ गई। अब ये किस्सा बिल्कुल सच है या इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये सुनसू के सिद्धांतों का निचोड़ दिखाता है कि अनुशासन सबसे ऊपर है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो और जरूरत पड़े तो सत्ता का कठोर प्रदर्शन करने से भी मत हिचकिचाओ।
ये कहानी तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। खैर, इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने वू के लिए कई लड़ाइयां जीती, खासकर वो शक्तिशाली चू राज्य के खिलाफ, और उनकी ढाक जम गई।
सही है, उनकी प्रतिष्ठा एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन जैसा हमने पहले भी इशारा किया था, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि कला युद्ध की शायद किसी एक व्यक्ति की नहीं है।
अच्छा,
हो सकता है ये कई पीढ़ियों के सैन्य ज्ञान का संग्रह हो, या ये भी हो सकता है कि इसे बाद में सुन बिन नाम के एक रणनीतिकार ने लिखा या संकलित किया हो, जो खुद को सुनतजू का वंशज बताते थे।
तो ये अनिश्चितता बनी हुई है।
हाँ, और ये धुंधला का ही सुनतजू को एक व्यक्ति से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक विचारधारा का प्रतीक बना देता है।
तो चलिए अब सीधे उस किताब पर आते हैं जिसने सुनतजू को अमर कर दिया, बिंगफा यानी कला युद्ध की। सिर्फ 6,000 चीनी अक्षर, 13 अध्याय, लेकिन असर हजारों साल और हजारों मील तक।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सेना की रूल बुक या हाउ टू गाइड नहीं है।
नहीं है,
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये युद्ध पर, रणनीति पर, लीडरशिप पर और इंसान के स्वभाव पर एक दार्शनिक नजर है। हर चैप्टर एक पहेली की तरह खुलता है, प्लानिंग से लेकर जासूसों के इस्तेमाल तक, हर पहलू पर बारीक नजर डाली गई है।
और इसका सबसे क्रांतिकारी विचार शायद यही था कि असली जीत लड़ाई के मैदान में खून बहा कर नहीं, बल्कि बिना लड़े ही दुश्मन को झुका देने में है। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बहुत आगे की बात रही होगी।
यकीनन, सोचिए उस दौर में जहां बड़ी बड़ी सेनाएं टकरा रही थीं, वहां ये कहना कि युद्ध तो आखिरी विकल्प होना चाहिए। और असल कमाल तो दुश्मन के इरादों को, उसकी योजनाओं को, उसके गठबंधनों को बिना हथियार उठाए तोड़ देने में है। ये एक बिल्कुल नया नजरिया था। इसके लिए चाहिए दिमागी कसरत, डिप्लोमेसी, मनोवैज्ञानिक दबाव और हाँ, धोखा।
इसके कुछ खास अध्यायों का जिक्र करें, जैसे पहला अध्याय योजना बनाना।
हाँ, लेइंग प्लान्स। इसमें वो 5 बुनियादी चीजें बताते हैं जिन पर जीत निर्भर करती है। पहला, नैतिक लक्ष्य या दाओ, मतलब क्या आपका मकसद सही है और क्या लोग आपके साथ हैं। फिर मौसम और समय, जमीन या भूभाग की समझ, लीडर की काबिलियत और अनुशासन या संगठन। ये दिखाता है कि वो युद्ध को कितने व्यवस्थित और लॉजिकल तरीके से देखते थे।
और दूसरा अध्याय,
वेजिंग वॉर यानी युद्ध छेड़ना। इसमें वो लंबे युद्धों की आर्थिक बर्बादी पर चेताते हैं कि लड़ाई तेज और निर्णायक होनी चाहिए, वरना देश तबाह हो जाएगा।
और वो सबसे मशहूर अध्याय शायद तीसरा, रणनीति से हमला।
हाँ, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। इसी में वो सूत्र है, सर्वोच्च उत्कृष्टता दुश्मन के प्रतिरोध को बिना लड़े तोड़ने में है।
यही है वो लाइन।
बिल्कुल, इसी में वो कहते हैं कि सबसे अच्छी रणनीति है दुश्मन की योजनाओं पर हमला करना, उसके बाद उसके गठबंधनों को तोड़ना, फिर उसकी सेना पर हमला करना, और सबसे आखिर में जब कोई चारा न बचे तब जाकर शहरों पर हमला करना।
यानी सीधा टकराव एकदम आखिरी रास्ता।
बिल्कुल, ये उनकी सोच की प्राथमिकता दिखाता है।
इस किताब की भाषा भी बड़ी अनोखी है, एकदम सधी हुई सूत्र जैसी, कहीं कहीं पोएटिक भी लगती है, पर हर शब्द नपातुला।
हाँ, उसमें विरोधाभासों का, पैराडॉक्स का बहुत सुंदर इस्तेमाल है। जैसे समस्त युद्ध धोखे पर आधारित है, ये लाइन पाठक को चौंकाती है, सोचने पर मजबूर करती है। या फिर वो पानी का रूपक इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी जमीन के हिसाब से अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही सेना को दुश्मन के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ये लचीलेपन और एडेप्टेबिलिटी के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाता है।
2500 साल गुजर गए, लेकिन इस किताब की गूंज वो कम नहीं हुई है। चीन में तो ये समझिए एक तरह से बाइबल बन गई, मिलिट्री और पॉलिटिकल सलाहकारों के लिए।
निश्चित रूप से, तांग राजवंश ने इसे 7 सैन्य क्लासिक्स में शामिल कर लिया। सोंग राजवंश में तो ये मिलिट्री अफसरों के इम्तिहान का हिस्सा बन गई।
अच्छा।
हाँ, 3री सदी के योद्धा काओ काओ से लेकर 20वीं सदी के माओ जेडोंग तक सबने इसे पढ़ा, समझा और इस पर अपनी टीकाएं लिखीं। इसका असर इतना गहरा था।
और चीन के बाहर भी इसका असर पहुंचा, जैसे जापान के समुराई योद्धाओं पर।
हाँ बिल्कुल, समुराई क्लास ने इसे अपनाया। पश्चिम की दुनिया इससे कब वाकिफ हुई?
पश्चिम में इसका पहला अनुवाद 18वीं सदी में हुआ था। एक फ्रेंच मिशनरी थे, जीन जोसेफ मैरी एमियोट, उन्होंने किया। लेकिन दुनिया भर में इसकी धूम मची 20वीं सदी में, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
हाँ, मैंने भी सुना है कई पश्चिमी मिलिट्री लीडर्स ने इसकी तारीफ की।
हाँ, जैसे अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर और खाड़ी युद्ध वाले जनरल नॉर्मन श्वार्ट्ज़कॉफ। वेस्ट पॉइंट जैसी टॉप मिलिट्री अकेडमियों में ये पढ़ाई जाने लगी।
लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब 1980 के दशक में कॉरपोरेट दुनिया ने इसे हाथों हाथ लिया।
अच्छा,
बिजनेस वर्ल्ड में?
हाँ, अचानक से सुन सु मीटिंग रूम के हीरो बन गए। बिजनेस की दुनिया को एक जंग के मैदान की तरह देखा जाने लगा, और सुन सु के नुस्खे दुश्मन को जानो, खुद को जानो, धोखे का इस्तेमाल करो, सही मौके पर हमला करो, ये सब
बाजार पर कब्जा करने, कंपटीशन को हराने और नेगोशिएशन जीतने के लिए इस्तेमाल होने लगे।
बिल्कुल।
और आज तो ये आलम है कि बिजनेस, कानून, राजनीति, खेल, साइबर सुरक्षा, डिप्लोमेसी, शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहां कंपटीशन हो और सुन सु का जिक्र ना आता हो।
बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, असली लड़ाई मैदान से पहले दिमाग में जीती जाती है।
सही कहा।
सुन सु के कुछ वाक्य तो मतलब कहावतें बन गए हैं, वो उनकी सोच की गहराई को चंद शब्दों में समेट लेते हैं।
हाँ, कुछ पर गौर करें तो समस्त युद्ध धोखे पर आधारित है। इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है।
नहीं,
बल्कि दुश्मन की सोच को मैन्युपुलेट करना, उसे भ्रम में डालना। अपनी ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि दुश्मन ये समझे कि आप कितने ताकतवर हैं या शायद नहीं है।
धारणा का खेल।
बिल्कुल। फिर सर्वोच्च उत्कृष्टता दुश्मन के प्रतिरोध को बिना लड़े तोड़ने में है। ये उनके दर्शन का दिल है। जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे इस तरह मजबूर कर देना है कि वो लड़ने की सोचे ही नहीं।
बिना लड़े जीत।
हाँ, और वो मशहूर लाइन, यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है।
बिल्कुल।
अपनी ताकत कमजोरी और अपने कॉम्पिटिटर की ताकत कमजोरी को समझना किसी भी मुकाबले में कामयाबी की पहली शर्त है। फिर अव्यवस्था के बीच में अवसर भी होता है।
ये तो बहुत पॉजिटिव बात है।
हाँ, मुश्किल हालात में भी उम्मीद और मौका तलाशने की बात, संकट को अवसर में बदलने की कला, और आखिर में पानी अपना मार्ग उस भूमि की प्रकृति के अनुसार बनाता है। सैनिक अपने शत्रु के संबंध में अपनी विजय प्राप्त करता है।
ये अडैप्टेबिलिटी वाली बात।
हाँ, लगातार बदलते हालात में ढल जाना, लचीला बने रहना, कोई एक फिक्स रणनीति हमेशा काम नहीं करती।
इन बातों में वाकई शाश्वत ज्ञान छुपा लगता है। अब अगर हम इसके अडैप्टेशंस की बात करें तो ये दिलचस्प है कि सुन तुजू के जीवन पर शायद कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी है।
हाँ, ये बात सही है।
या कलायुद्ध का कोई सीधा फिल्मी रूपांतरण भी कम ही देखने को मिलता है।
हाँ, उनका प्रभाव ज्यादातर वैचारिक रहा है, आइडियाज के लेवल पर, सीधे कहानी के रूप में कम। जैसे 1987 की वो फिल्म थी वॉल स्ट्रीट।
हाँ,
उसमें माइकल डगलस का किरदार गॉर्डन गेको स्टॉक मार्केट में अपनी चालों को सही ठहराने के लिए सुन सुजू का हवाला देता है।
अच्छा।
या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स जिस शो में सत्ता के लिए जो दांव पेच चलते हैं, जो धोखा, जो गठबंधन बनते बिगड़ते, उनमें सुन ज़ू की झलक साफ दिखती है।
लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो शायद बिजनेस और सेल्फ हेल्प की दुनिया में हुआ है ना, द आर्ट ऑफ वॉर फॉर एग्जीक्यूटिव्स, सुन ज़ू फॉर वुमेन, ऐसी न जाने कितनी किताबें।
बिल्कुल, और ये दिखाता है कि उनके मूल विचार कितने फ्लेक्सिबल और रेलेवेंट है कि उन्हें इतने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ढाला जा सकता है।
लेकिन यही एक चुनौती भी है।
क्या चुनौती?
कि क्या इन एडेप्टेशंस में मूल विचारों की वो गहराई बनी रहती है या वो बस सतही नुस्खे बनकर रह जाते हैं।
और हाँ, वो कम ज्ञात पहलू कि शायद सुन ज़ू एक व्यक्ति थे ही नहीं, ये बात अक्सर इन पॉपुलर एडेप्टेशंस में कहीं खो जाती है।
ये भी एक पॉइंट है। तो हमने सुन ज़ू के रहस्यमय जीवन, उनके उथल पुथल भरे युग, उनकी कालजयी कृति कला युद्ध की और उसकी आज तक की प्रासंगिकता पर बात की। उनका सबसे बड़ा सबक शायद यही है, लड़ो मगर दिमाग से, जीतो मगर कोशिश करो कि बिना लड़े ही जीतो।
बिल्कुल।
तो आज के माहौल में जहां हर तरफ कंपटीशन है, चाहे वो दफ्तर में हो, समाज में हो या अपने अंदर ही क्यों ना हो, हम सुन ज़ू के सिद्धांतों, गहरी समझ, सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक जागरूकता को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम भी बिना सीधे टकराव के समझदारी से अपनी मंजिल पा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।
यकीनन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।